सुनकर अपनी बात को छोड़ के दलील को ले लेना, यही दीन है। इत्तबाए सुन्नत के मसाइल में भी आपने वो चैप्टर पढ़ा था, आप भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी याद है कि चारों आइमाए कराम के आपको अकवाल लिखाए गए थे कि अगर तुम्हें हमारे किसी कॉल के मुकाबले में कोई सही हदीस मिल जाए तो तुम हमारे कॉल को दीवार पे दे मारना। ये वो उनका अपना मसलक था। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सुनकर मानने वाला बना दे, ठीक है। लेकिन इस पे कोई बहस करना, हुज्जतें करना, ये है वो है, इसकी जरूरत नहीं होती। लोग कभी भी नहीं मानेंगे आपकी बात से, और दूसरे लोग मान जाते हैं, दीन वाले नहीं मानते क्योंकि उनके पास भी उसके लिए कोई दलील है, आप उस पे कोई फतवा ना दें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑनलाइन पे अब ये वॉइस क्लियर है आप लोगों को इंशाल्लाह। हम पहले थोड़ा सा, आज हमारा चूंकि पिछला सबक है तो ये करके ब्रेक दें, इज इट ओके? इंतजार तो नहीं कर रहे थे ब्रेक का? चलिए ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके आपको सब्र दे और रमजान की आदत भी डाल दे। अगले हफ्ते से, बल्कि एक दो दिन बाद आप लोगों उनको, क्योंकि पूछेगा भी नहीं कि भूख लगी है कि नहीं लगी है। तो बहुत ही खूबसूरत आयतें हमने कल पढ़ी थी, थोड़ा सा उसमें एडअप करवा के इंशाल्लाह आगे चलूंगी। और जिन लोगों का पिछला मिस हो जाता है, जाहिर बात है कि जी, चलिए मैं शुरू करूंगी। हम पिछली आयतों में से कुछ चीजें नोट करके, पिछली आयतों में से कुछ चीजें नोट करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम आज का अपना अगला जो लेसन है उसको पूरा करेंगे। नहमतुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। मैं बोलूंगी तो आपकी भी आवाजें आएंगी, मैं चुप कर जाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि हम कुछ ज्यादा ही आवाजें बना रहे हैं। जी खोल लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो कभी कभी फर्क मिटता है ना, बाहर जूतों को रखने से मैं देखती हूँ। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक छोटी सी कोशिश करूं, अगर आप लोग मेरी मदद करें, करेंगे, अपने जूते के ऊपर अपने नाम की एक छोटी सी चिट लगाएं, फिर मैं आपके जूता रखने से किस तरह जूता आपका पड़ा होता है मैं आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। कई जूते होते हैं, मैं खड़े होकर सोचती रहती हूँ ये कभी मुझे पता चले ये किसका जूता है, तो मुझे उनकी शख्सियत को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। बहरहाल आप देखिए कि हमने आयत नंबर 19 से 21 तक बहुत सारी ऐसी बातें कल एक पीछे देखी हैं कि जिससे हमें ये समझ आता है कि ये दुनिया सिर्फ एक हादसे का नतीजा नहीं है, ये एक सिर्फ और एक सिर्फ बेकार पैदा हो जाने वाली, और जिसको आप इंग्लिश में कह दें कि को इंसिडेंसिस नहीं है, जिसको कि डार्विन ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। अगले सबक, अगली आयतों में भी कुछ उस पर बात होगी, लेकिन चंद चीजें आपको ऐड करवाना चाहूंगी जो मैंने सिर्फ ऐसी बातों में आपको बता दी थी, लेकिन अब कुछ मेरे सामने फिगर्स रखे हुए हैं। पहली बात आप देखिए कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने कैसे इकोसिस्टम रखा है, फूड साइकिल है। कल इंशाल्लाह चूंकि मेरा स्पेशल डे, आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगी, मैंने इसलिए रोक ली कि कल हमने ज्यादा इंशाल्लाह रिलैक्स होके काम करना है, तो फिर आज दिखा दी तो सबक का हिस्सा कुछ मिस हो जाता है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें मैं आपको सिर्फ अपने लफ्जों में लिखा देती हूँ ताकि आपके इधर हाफसे में आ जाए। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को किस तरह से बनाया है। हमने यहाँ लफ्ज बुरुए को भी कहते हैं, कसर को भी कहते हैं, और मजबूत इमारत को भी कहते हैं। लेकिन अगर आप इस बुर्ज को, आसमान की वो 12 मंजिलें जिसको अमूमन लोग 12 सैयारों के नाम से जानते हैं, उससे रिलेट करके देखें तो ये पता चलता है कि जिस तरह इस जमीन में अल्लाह ताला ने चीजों को मुख्तलिफ तरीके से सजाया हुआ है, इसी तरह आसमानों पे भी कुछ इसी किस्म की चीजें। कहते हैं कि दुनिया जो है, अल्लाह ताला ने ये जो ग्लोब हमें दिखता है ये घूमता है ना, ये भी आपको पता है, एक्सल के गिर्द घूमता है। अब अमूमन क्या होता है कि कोई चीज जिसको आप अपने जहन में लाएं, गाड़ी का टायर अपने एक्सल के ऊपर, टायर यूं घूमता है ना सीधा। कभी कभी आपने देखा कि मर्दों की जुबान से ये बात मेरे कानों में आती है, बचपन से सुनी, कि गाड़ी की अलाइनमेंट रॉन्ग है। वो होता क्या कि एक्सल के गिर सीधा घूमने की बजाय पहिया 19 से 20 हो जाता है। हमारी इस दुनिया जिसको अल्लाह सुभान व तआला ने एक एक्सेल पे रखा है, ये इसके ऊपर बिल्कुल सीधी नहीं घूम रही। आप इसको अपनी समझ से इतना कह लीजिए कि अगर दुनिया अपने एक्सेस पे 25 डिग्री के एंगल से घूमे तो ये बिल्कुल सीधी होती, लेकिन ये 25 की बजाय 23.5 डिग्री के थोड़े से इंक्लाइनेशन पे है। पहले तो इससे आजिज़ी समझ आती है। बिल्कुल इमेजिनेशन में लाइए कि जैसे किसी इंसान की रुकू की हालत है ना, इस ग्लोब में इस दुनिया के घूमने की कैफियत यूं है। वाह, इसकी वजह, इस सिर्फ हल्के से बैलेंस की वजह से आज दुनिया में हर चीज अपने वक्त पे, अपने मौसम वक्तों पे हर चीज हो रही है। कहते हैं कि अगर ये जमीन बिल्कुल सीधी होती, यानी गोल अपने एक्सेस पे इस तरह घूमती, तो जितनी पोल्स पे बर्फ है जो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो गया, पूरी दुनिया के अंदर पानी का इंतजाम जो कर रही है, ये दुनिया बनने के चंद सौ साल के बाद ही पिघल चुकी होती और आज दुनिया में पानी का नाम भी ना होता। और अगर ये 23.5 डिग्री की बजाय 22 होती, 1.5 डिग्री का फर्क है, और आप पता है डिग्री कितनी छोटी होती है, यानी अगर 22 डिग्री पे ये घूमती तो पोल्स पे जितनी बर्फ है उसका, जो जितनी बर्फ है वो सारी बर्फ यूरोप के अंदर पिघलती और यूरोप के खित्ते में जिंदगी मुमकिन न रहती। ये जुमला बस इसलिए सोचें कि हम सब यूरोप में बैठे हैं। मैंने जब ये बात पढ़ी तो देखी सुनी तो मुझे लगा कि वाकई हमने कभी इसको सोचा भी नहीं है, पूरी दुनिया में जिंदगी नामुमकिन हो जाती। फिर इस दुनिया में जो जमीन रोटेट करती है इसकी वजह से हवाएं चलती हैं। ये जो आजकल हम जो हमने पीछे पढ़ा के लवा लवा के और हवाएं हवाएं क्यों चलती हैं, क्योंकि जमीन भी घूम रही है। पंचक्की का तस्वुर लाइए जहन में, पंचक्की घूमती है ना तो हवा हिलती है और उससे फिर बिजली पैदा होती है, समंदरों के किनारे ऐसी चीजें लगी होती हैं। अगर ये जमीन घूमने की बजाय साइलेंट होती तो जितने बादल समंदरों के ऊपर बनते वो समंदरों के ऊपर वापस बरस जाते और पूरी दुनिया में फ्लडिंग हो जाती। ये जो खुश्की के ऊपर बारिश बादल बरसते हैं ना, ये इन हवाओं की वजह से बरसते हैं, जिसको अल्लाह लवाके कहते हैं, कि कहां ये कहीं पोलर ने पोलन्स को एक से जगह से दूसरी जगह कर रही हैं, कहीं दूसरी तरफ लेके जा रही हैं। आप देखिए कि जितनी साइंस की तरक्की बढ़ती जा रही है ना, उतना अल्लाह की कुदरत के मजाहिर बढ़ते जा रहे हैं। रात मेरा ये हाल था, मेरा फेवरेट है कि मैं, जिसको आप कहें कि इट्स माय हैबिट, कि मैं जब बिल्कुल रात को अंधेरे में अकेली, यानी घर में सब सो ही चुके हों तकरीबन, उस वक्त कोई आप ऐसी यूनिवर्स की वीडियो देखें और जब आप उसको उस वक्त देखते हैं अपनी पूरी स्क्रीन पे और वो आपको हकीकतें समझ आती हैं। मैं कई चीजें मैंने आपके लिए सेव की, लेकिन मैंने सोचा कि आप नहीं मजा ले सकेंगे क्योंकि आपके साथ इतने लोग यहां बैठे होंगे। हम जितना भी अंधेरा कर लेंगे हम उतना अंधेरा नहीं कर सकते जो रात की तन्हाई में अपने ऊपर होता है। ऐसे लगता है कि वो कायनात भी घूम रही है और आपका दिल भी डूब रहा है। इस तरह की इस कायनात में अल्लाह ताला की प्रोग्रामिंग है, आप सोच नहीं सकते। एक और मिसाल नोट कीजिए कि कायनात में आपको पता है कि जितनी भी जिंदा चीजें हैं, अब ये मैं और आप तो नहीं है ना, जिंदा चीजों में अगर आप देखें कि जो लाइवली चीजें, उसमें सबसे छोटी चीज जिसको कंसिडर करते हैं वो अमीबा है, यूनिसेलुलर, यानी सिर्फ एक सेल से उसका जिस्म बना है, और हमारा जिस्म खरबों खरबों सेलों से बना है। इसी से आपने और अमीबा के फर्क को नोट कर लीजिए, उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। और कहते हैं कि फिजा में 20% ऑक्सीजन रहनी चाहिए। अब आप सोचिए जरा, 20% ऑक्सीजन हमारे इर्द गिर्द जो बाकी गैसेज हैं उनमें 20% हो, अगर इससे ज्यादा हो तो सिर्फ एक माचिस की तीली के जलते ही पूरी दुनिया में आग के अंगारे शुरू हो जाए, और अगर 20% से कम हो तो लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो। जिस तरह आपने देखा है कि जो लोग सिलेंडरों पे जी रहे होते हैं तो कभी गैस कम हो जाए तो उनका सांस उखड़ने लगता है। अल्लाह ताला ने इस सारे सिलसिले को कैसे मेंटेन किया? दरख्तों के जरिए। दरख्तों को साइंस की जुबान में लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, कि ये जमीन के फेफड़े हैं। होता क्या है कि ऑक्सीजन जितनी जिस्म को चाहिए उसको जमीन के अंदर उतनी रहती है, और बाकी जो है वो मुख्तलिफ तरह से दूसरी चीजों में यूज कर दी जाती है। जहां दरख्त ज्यादा होते हैं वहां सांस लेना इसलिए भी अच्छा लगता है कि वहां एग्जैक्टली 20% का रेशो रहता है। अल्लाह ने ये जो खामोश मशीनें आपको मुझे दिख रही है ना दरख्तों की सूरत में, ये हमारे ऑक्सीजन के निजाम को बैलेंस कर रही है, बिल्कुल इस तरह से ऑपरेट करती हैं। फिर आप देखिए कि लोग कहते हैं कि जी वक्त के सारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और दुनिया में आबादी खत्म हो जाएगी। माल्थीस का नजरिया आपको पीछे बताया था सूरत अल अराफ में, सूरत अल अनाम की आयतों में, कि उसने कहा था कि आज से 50 साल बाद या कुछ साल बाद दुनिया में खाना खत्म हो जाएगा। हालांकि आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला ने जो ये कहा कि हमने हर चीज को एक अंदाजे से उतारा है, शुरू में दुनिया थोड़ी थी, फ्यूल थोड़ा चाहिए था। सबसे पहली चीज जो हम सब ने बचपन से सुनी, कोयला जलाने के काम आता है। आहिस्ता आहिस्ता कोयले के रिसोर्सेज खत्म हुए तो लोगों को थोड़ी फिक्र हुई कि आप जलाएंगे क्या, तो आप देखते हैं कि उसके बाद सुई गैस निकल आई, फिर गैस, पेट्रोल, और आज के दौर में क्या चीज है, न्यूक्लियर फ्यूल। और फर्क कितना है, ये एक फिगर नोट कीजिएगा, बड़ा हैरान कुन हद तक इंसान को दिखाता है। 60,000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए, यानी 60,000 मेगावाट बिजली अगर बनानी हो तो उसके लिए कल के दौर में 18 मिलियन टन, 18 मिलियन टन कोयला चाहिए था। यानी इतना ज्यादा कोयला हो, मेरा ख्याल है कि एक पूरा हीप हो, आधा शहर भर जाए अगर अपने तस्वुर में हम लाएं, फिर उससे ओनली 60,000 मेगावाट गैस बिजली बनती थी। आज के दौर में इसका नेमुल बदल क्या है, यूरेनियम। सिर्फ 7 किलो यूरेनियम से इतनी ही बिजली आज न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे यूज हो सकती है। यानी अल्लाह को पता है, आप कहते हैं हम खाएंगे कहां से, बच्चों की शादियां कैसे होंगी, ये कैसे होगा, वो क्या होगा, अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कि पानी के अंदर भी जो खूबसूरत निजाम है, बैक्टीरिया, हम सब उससे वाकिफ है, हमने बहुत यकीन रखा हुआ है कि आजकल वायरस फैला हुआ है, आजकल पोलन एलर्जी फैली हुई है, दिस एंड दैट। सिर्फ बैक्टीरिया को अगर आप देख लें कि अल्लाह ताला ने उसकी लाइफ के साइकिल को कैसे चलाया हुआ है, ये पानी वाले माहौल में रहता है। कहते हैं कि अगर इसको इसके हस्बे मुवाफिक हालात मिले तो आज पूरी जमीन बैक्टीरिया से भर चुकी होती। आज इस वक्त दुनिया में कहां पानी है, कितना नहीं, कहीं खुश्की है, इसकी वजह से बैक्टीरिया दुनिया में सिर्फ उतने ही है जितने उनकी उनसे इंसान फायदा उठा सके। फिर इसी तरह दीमक, जिसका तذکرہ पीछे हुआ था, दीमक की किस्म 2 मिलियन अंडे देती है, और जिनमें से सिर्फ 500 अंडों में से दीमक निकलती है और बाकी अंडे कोई और मखलूक खा जाती है। कहते हैं कि अगर वो सारे के सारे अंडे दुनिया में मौजूद रहे और उनसे दीमक निकले तो पूरी दुनिया में दीमक की तहें लगी हुई हैं। आप देखिए मुर्गी और मछली तो हमारे आंखों के सामने देखी हुई चीजें हैं ना। मुर्गियां जितने अंडे देती हैं, आप सोचते हैं कि अगर हर अंडे में से चूजा निकले तो कहते हैं इस दुनिया में मुर्गियों की फौजें हों। कितने अंडे हम खाते हैं रोज, कितने अंडों की ब्रेड्स बनती हैं, कितने अंडों के केक बनते हैं। अगर हम ये अंडे ना खाएं और हर अंडे से एक चूजा सिर्फ निकले तो पूरी दुनिया में सिर्फ मुर्गियां फैल जाए। यही हाल मछलियों के, शहद की मक्खी अपनी जिंदगी में 50,000 उड़ाने चलती है। इंशाल्लाह सूरह नहल पढ़ेंगे जिंदगी रही तो रमजान के बाद, फिर आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं और अल्लाह की कायनात क्या कर रही है। 50,000 उड़ानों के बाद सिर्फ 1 टीस्पून शहद बना के दुनिया से जाती है, और वो एक स्पून जो है हम खाते हैं। इतनी मेहनतों का नतीजा इंसानियत को शहद की सूरत में मिलता है। किसने ये निजाम कायम किया, 50,000 फूलों का रस चूसती है फिर एक चम्मच शहद बनता है, जो हमें से अक्सर की आधी चम्मच तो सिंक में जाके गिर जाती है। इतना हमारे पास है, अल्लाह हमें हिदायत दे। फिर जो शार्क मछली के पीछे बात हुई तो उसकी भी थोड़ी डिटेल समझ लीजिए कि शार्क मछली होती है, इसके पूरे मुंह में इस तरह रोज होती है। अब जब ये खाती है गोश्त तो इसके दांतों की जो रोज है उसके अंदर छोटी छोटी गोश्त की बोटियां फंस जाती हैं। अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम किया है कि रिमोरा फिश कहते हैं उसको, रिमोरा फिश नाम की एक मछली रहती ही इसके मुंह में, और वो बैठ के अंदर उस वो दांतों में फंसा हुआ गोश्त खाती रहती है। अल्लाह कहते हैं तुम रिस्क दोगे, तुम हो इनके राजिक, हम इनको रिस्क देते हैं। अब देखिए हम खाना खाते हैं, फिर मेदे में जाता है, फिर चीव, पहले चीव किया, फिर मेदे में गया, फिर छोटी इंटेस्टाइन में, बड़ी में, 7, 8, 10 घंटे के बाद फिर कहीं जाके वो ब्लड में गया। कितनी मेहनत की, मच्छर 1 सेकंड में आपके हाथ पे बैठता है, वो पी के चला जाता है। अल्लाह उसको रिस्क देता है, अल्लाह ने उसका रिस्क रखा है आपके खून में, आप कैसे रुकेंगे। मक्खी आपके खाने का बेहतरीन हिस्सा लेके चली जाती है। तो जिस तरह वो रब हमारा रब है ना, इसी तरह वो रब दूसरी चीजों का भी रब है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कायनात में बड़ा खूबसूरत निजाम रखा हुआ है। कहते हैं कि एक इंसेक्ट था जो बहुत ही उनको लग रहा था कि फसलों को नुकसान देता है, कीड़ा फसलों का कीड़ा कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां डाल के उसको खत्म कर दिया। जो ही उसको खत्म किया तो जो चीज मुशाहदे में आई वो क्या था कि मोनाक बटरफ्लाई, वो भी खत्म हो गई है। ये बटरफ्लाइज की एक बहुत अहम किस्म है जो बहुत कारामद है इस कायनात में। पता क्या चला कि वो इंसेक्ट जो इंसानों ने दवा डाल के खत्म किया वो इस मोनाक बटरफ्लाई की खुराक थी, तो वो खत्म हो गया। तो ये हो गया। और वो बात तो आपने पहले भी शायद मेरे मुंह से सुनी होगी कि मलेरिया जिस जरासीम से फैलता है, जिस मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। तो कनाडा में इन्होंने उस मच्छर को खत्म करने की कोशिश की कि मलेरिया से बचे, मलेरिया से बच गए, लेकिन एक और इतनी जबरदस्त किस्म की बीमारी पैदा हो गई कि उनको फिर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना पड़ा उस मच्छर को। पता क्या चला कि इस मच्छर से बैक्टीरिया तो पैदा होता है लेकिन फलां दूसरी बीमारी के जरासीम्स को ये खाता है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने तो अल्लाह की वो कदर ही नहीं की जो उसकी कदर का हक है। हकीकत है कि जितना इंसान फितरत के अंदर दखल अंदाजियां कर रहा है उतना इस दुनिया का निजाम जो बिगड़ रहा है। इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो हम देखेंगे बहुत कुछ बंदगी के नाम पर कि हम हैं क्या, हमारी औकात क्या है और हम बंदे क्या है। हमने तो अपने आप को अपनी नजरों से देखा है, अब अल्लाह हमें हकीकत की नजरों से दिखाते हैं। आइए अब आदम और इबलीस की कहानी एक नए अंदाज में पढ़ते हैं। अगली आयतों में अल्लाह ताला ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से इंसान के शऊर को बेदार किया कि तुम्हारे पास बड़ा बनने की, अकड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम जितना मर्जी बड़ा बन लो तुम बड़े नहीं बन सकते। आयत नंबर 26 से 48, 26 to 48, इसमें इंसान, इबलीस और आदम की कहानी कुछ नए इजाफों के साथ। ये मौजू पहले दो दफा पढ़ चुके हैं, सूरत अल बकरा और सूरत अल आराफ में। तीसरा मौका है ये जब हम कुरान पाक में तरतीब के एतबार से इसको पढ़ेंगे। वलकद खलकनल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, और यकीनन हमने बनाया है इंसान को सने हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से। ये है हजरत इंसान का तारुफ। हम अपनी बात शुरू करते हैं, हम कहते हैं मैं फलां की बेटी, फलां की बहू, फलां, अपने नाम के साथ चार छह कल्लाबे मिला लेते हैं, फिर अपनी बात पूरी करते हैं। हम फलां मेजर जनरल और डीएसपी फलां फलां के घर वालों में से हूं। अल्लाह इंसान का तारुफ क्या करता है, आओ तो मैं उस इंसान से मिलाऊं। हलक नल इंसान, पहली बात है कि हमने इंसान को बनाया। ये आयत एवोल्यूशन यानी डार्विनिज्म के नजरिए का रद्द भी है कि हमने ये नहीं किया कि वलकद खलकनल बंदर वल बादल इंसान, के पहले बंदर बनाया फिर इंसान बनाया, डायरेक्ट अल इंसान बनाया। किससे बना, मिन सलसाल मिन खमाए मसनून। इन तीन टर्म्स को समझ जाएंगे तो हम सब अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस चीज से पैदा किया। पहला लफ्ज इसमें सलसाल है जिसको हम देखेंगे, और फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज हमा और फिर मसनून। सलसाल का लफ्ज रुबाई है। रुबाई कौन सा होता है जिसमें चार मुख्तलिफ लफ्ज होते हैं, स्वाद लाम सलसला, ठीक है सलसला। अब इसके लफ्ज के साथ ही आपको इसका मानी भी समझ आ रहा होगा, सलसला सलसला एक रिदम वाली आवाज लगती है। तो अरबी में बाकी मानदा पानी जो मशकीजे में हिलने की खड़खड़ाहट से मुशाबा हो उसको सलसला कहते हैं। घड़े में थोड़ा सा पानी बाद में रह जाता है ना, तो जब वो सर पे घड़ा रख के चलती है ना तो पानी वो थोड़ा होता है ना, तो वो घड़े के किनारों से खट खट टिक 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 चलता है, उस आवाज को सलसला कहते हैं। सलसलतुल जरस कहते हैं अरबी जबान में घंटी की आवाज को। तो गोया के लफ्ज सलसले में, सलसला लफ्ज में खटखटाने और बस बजने का मानी आ रहा है कि तुम अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज ना समझो, तुम घड़े के अंदर बचा हुआ एक पानी हो और खाली बर्तन ज्यादा बचता है। उसके बाद अगला लफ्ज देखिएगा हमा। हमा अरबी जुबान में स्या कीचड़ को कहते हैं, जिसके अंदर बदबू पैदा हो चुकी हो। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि हमा वो कीचड़ जिसके अंदर खमीर उठ चुका हो। कभी आपने आटा गूंदा खमीर डाल के, यीस्ट को कहते हैं खमीर। जितना मर्जी मजे का पिज्जा बाद में बन जाए लेकिन उस आटे की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती जिसके अंदर यीस्ट डाला होता है। और जरा किसी के हाथ में जरा कमी बेशी हो जाए, ज्यादा जिन्होंने डाल दिया होता है उनका खाया नहीं जाता, क्योंकि उसमें एक सड़ांध होती है। तो इंसान को एक ऐसे गारे और कीचड़ से पैदा किया है कि जिसके अंदर बदबू पैदा हो चुकी हो। तीसरा लफ्ज हम अपने तारुफ में समझ लीजिए, मसनून। मसनून का लफ्ज अरबी जुबान में दो मुख्तलिफ मानों में आता है। रूट इसका क्या होगा? सीन नून नून सन्ना, पीछे कहीं पढ़ा हमने जी? नहीं, कुरान पाक में कहाँ पढ़ा है? सूरह बकरा में हजरत उजैर का वाक्या, लम यतसन्ना, उसका खाना पुराना नहीं हुआ, तीसरे पारे के शुरू में आता है। बहरहाल इसको समझ लीजिए तो आपको समझ आएगा। सन्ना लफ्ज या मसनून लफ्ज का एक मानी क्या होता है? मुतगैर। मुतगैर कह लीजिए, मुनतिन कह लीजिए, अमलस कह ले। मतलब क्या? ऐसी सड़ी हुई जिसमें सड़ने की वजह से चिकनाई पैदा हो गई हो, लेस। उर्दू में लफ्ज सुनते हैं लेस, ऐसी मट्टी जो पहले सड़ी पुरानी हुई फिर उसके अंदर चिकनाई पैदा हो गई हो। और दूसरा इसका मानी होता है मुसव्वर और मसबूब, दोनों स्वाद से हैं। कालिब में ढली हुई जिसको एक खास सूरत दे दी गई हो। अब दोनों को अलग अलग करके देखिए तो मसनून से मुराद एक क्या है? मुतगैर, जिसका रंग बदल चुका हो। कभी हमने तो नहीं देखा करीब से, लेकिन आपने कभी मट्टी के बर्तन बनते देखे हो? पहले दौर में लोग मट्टी की लेप करते थे घरों के बाहर किसी काम के लिए। आपने कभी मट्टी घोल के रखी हो? आप महसूस करेंगे कि जब करते हैं ना, पानी उसमें डालते हैं तो बड़ी अच्छी सी धीमी सी खुशबू आती है। अब एक बर्तन में आज भी जाके ये तजुर्बा कर लीजिए, बिल्कुल आम सूखी मट्टी तुराब जिसको कहते हैं, उसको लेके पानी में डाल दें, बहुत अच्छी लगेगी, खुशबू भी आएगी। एक दिन पड़ा रहने दें, 2 दिन, फिर जाके आप जरा उसको चम्मच से हिलाएं ना, तो आप देखेंगे कि उसमें लेस है। और 4-5 दिन के बाद देखेंगे ना तो उसमें कीड़े होंगे। ये जो कीड़ा पड़ना होता है ना, ये जान पड़ना है। आदम का पुतला कब बना? जब इस मट्टी में कीड़े पड़ गए। ये कीड़ा जिंदगी है, बेजान मट्टी से इंसान नहीं पैदा हुआ, क्योंकि इंसान के अंदर हयात का मादा जब पैदा हुआ तभी तो इंसान को बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इंसान ना सोने से बना, ना चांदी से बना, ना जाफरान से बना, ना कस्तूरी से बना, बना किससे? हमाय मसनून। और जरा इसकी अकड़ तो देखिए, इसकी चाल तो देखिए, इसका खुद को बड़ा समझना तो देखिए, इसका रब के आगे बोलना तो देखिए, इसका रब के मामले में अपने आप को इतना बेनियाज होना तो देखिए। इंसान कभी अपने ऊपर गौर करे कि मैं बना किस चीज से हूं, तो कभी अल्लाह के सामने सर ना उठा सके, ना सर वाला सर और ना अंदर वाली अकल इस तरह झुका रहे। क्या अल्लाह ताला इंसान को सोने से नहीं बना सकता था? चांदी से? पत्थरों के अंदर सोना रख दिया तो इंसानों को सोने के बना देता, फिर कौन सजदा करता? कौन या का नाबुद हो या का नस्तीन का तराना लापता? मट्टी से बने हुए इंसान की अकड़ इतनी है, तो सोचिए सोने से बने हुए इंसान की फिर शान कैसी होती। फिर ऐसा इंसान तो वाकई अपने नफ्स को खुदा बना लेता तो वाकई किया जा सकता था। तो गोया कि आप देखिए कि इन तीनों चीजों को जमा करें ना, तो तीन मुख्तलिफ फेजेस हैं। सलसाल सूखा गरा, पहले मट्टी घोली, ठीक है, पहले वो मट्टी घोल दी तो उसमें क्या आ गई? लेस हो गई। अरबी जबान में जो मट्टी होती है ना, उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, लिख लीजिए। सूखी मट्टी को तुराब कहते हैं, खुश्क मट्टी ये जो ऊपर डस्ट के तौर पे ना, जिसको इंग्लिश में आप डस्ट कहेंगे। सेकेंड फेज होता है मट्टी का तीन, तीन इन लाजिब। ये सारे लफ्ज आदम की तख्लीक में कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल हुए हैं, यहां उनका खुलासा कर देती हूँ। तो ए या नून से नमदार मट्टी बगैर भूसे के, यानी मट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर देना, सूखी गीली मट्टी, सूखी गीली मट्टी, उसको तीन कहेंगे। फिर तीसरी फेज होती है लाजिब, लाम अलिफ जाबा, लेसदार और चिपकदार मट्टी। जैसे वो गारी नहीं होती थी, क्या बोलते थे उसको? गारी नहीं, कुछ और लफ्ज होता है वो जो तख्तियों पे भी लगा के तो साफ कर, गाची गाची, ये लाजिब होगी। फिर उसके बाद एक अगली कैफियत होती है हमा, जब स्यादार होकर सड़ भी जाए और उसमें बदबू हो जाए। कीचड़ के मानों में, बारिश के बाद का कीचड़ जहन में ले आइए, जो किसी गांव की गलियों में देखा हो। फिर उसके बाद अगली सूरत होती है सलसाल, खुश्क खनकता हुआ कीचड़, जब वो कीचड़ सूखता है ना, यानी पहले गंधमन था उसमें, फिर बारिशों के बाद धूप आ गई, काफी दिन की सूरज की रोशनी के बाद वो क्या हो जाता है, जैसे खुश्क होता है, खन खनाता हुआ कीचड़। उसके बाद फिर अगली कैफियत होती है फखार, फखर से फटने वाला इंसान, फखारा। अब ये कौन सी फेज होती है, जब खूब सूखती है ना तो खन खनकने लगती है, यानी आप कहें कि मट्टी का बर्तन, ये सारे फेजेस से गुजर के आग पे पकाया, जब आग पे पकता है तो फखार बनता है। कभी मट्टी के बने हुए बर्तन को खटखट करे ना तो आवाज आती है ना, ये वही कैफियत होती है, यानी जब वो बिल्कुल अपनी असल कैफियत में आ जाता है। और सईद, स्वाद या स्वादाइन या दाल, जमीन की ऊपर की सतह और सतह का गर्दो गुबार, यानी जो हमें मट्टी दिखती है ना ऊपर से, ये कौन सी होती है, ये सईद होती है। अल्लाह सुबहाना ताला इंसान की ये बात करके कि हमने इसको किस चीज से, इसके किस इसका इंग्रेडिएंट क्या है उससे बनाया, ये जो लफ्ज़ मसनून है इसी से लफ्ज़ सुन्नत भी है। हम जब कहते हैं ना ये अमल मसनून है, तो दोनों ही मानी है, एक मानी देखिए मसनून ढला हुआ, शेप्ड के मानों में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को ये शेप दी, ठीक है। और अगर आप मसनून को पहले मानी में लें, पुराना या ढला हुआ या सड़ा हुआ, तो सुन्नत क्या है, ओल्ड थिंग, पुरानी चीज। इसका ऑपोजिट क्या होगा, मुहदस, और कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, बिदत कहते नई चीज को। यही तो सारा मसला है आज लोगों को दीन न समझ आने का, कि वो बिदात को दीन समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही न्यूली इन्वेंटेड थिंग खूबसूरत लग रही होती है, और सुन्नतें जो पुरानी होती हैं उसको छोड़ देते हैं। तो गोया के सुन्नत के अंदर भी ये लफ्ज सब कुछ मौजूद हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इंसान को इस तरह से बना दिया कि वो ठीकरी की तरह बजने लगा और उसके अंदर हल्कापन आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इंसान को यहां ये बात कहकर कि तुम इस तरह से बने हो, अल्लाह अकबर, I-27 देखिए, वल जान खलकनाहु मिन कब्लु मिन नारिस समूम, और जिन्नात को हमने पैदा किया था इससे पहले आग की लिपट से। पहले हजरत आदम यानी इंसान की बात की, अब जिन्नों की बात की, और जान अल इंसान का ऑपोजिट है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहते हैं ना, ठीक है, इसी तरह से जान अबुल जिन को कहते हैं, यानी जिन्नों का बड़ा। इंसानों के बड़े कौन है, आदम, तो अल जान कौन है। एक राय क्या है इसमें मुफस्सरीन की, कि जान से मुराद जिन्नों का बड़ा, यानी पहला जिन, जिसके बाद फिर जिन्नों की नस्लें शुरू हो गई। दूसरी राय यह कि जान जिन की जमा है। मिन कबल से मुराद किससे पहले, आदम से पहले। गोया के पता चला कि इंसानों के दुनिया में आने से पहले जिन्नात मौजूद थे। किस चीज से पैदा किया, नारिस समूम, आग समूम वाली। लव समूम को समझ लीजिएगा, समूम सुम से, सम्मा तुन से है, सुई का नाका, कहीं पढ़ा सूरत अल अराफ, हत्ता यलिजल जमल फी समिल हयात, तो सम क्या होता है, सुराख होता है, सुई का नाका, सुराख या घुसने का मौका देने वाली जगह। जहर को भी समा कहते हैं, और ये जो हमारे जिस्म के मुसाम है ना, जिसको पोर्स कहते हैं, वो भी इसी से है। ये जिस्म जो है ना, ये मुसाम जिस्म की खिड़कियां हैं, हवा को अंदर लेके जाती हैं, ठीक है। बादे समूम का नाम सुना होगा आपने उर्दू में, सहराओं में चलने वाली तेज हवा को बादे समूम कहते हैं। इसी तरह देखिए, आग के शोले का वो हिस्सा जो बाहर नजर आता है और इसके गिर्द ऐसे हाले से पड़ जाते हैं, कभी आप कैंडल लाइट को देखें ना, तो शोले के इर्द गिर्द आपको इस तरह से छोटे 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 दायरे दिखेंगे, ठीक है। तो जो इसके गिर्द हाले की शक्ल में इसका वो हिस्सा होता है जो आमतौर पर नजर नहीं आता, शोले के इस नजर ना आने वाले हिस्से का टेम्परेचर अमूमन ज्यादा होता है। इससे मुराद वो शदीद गर्म हवा है जिससे जिन्नात को पैदा किया गया। अब आप देखिए कि जिन्नात को अगरचे आग से पैदा किया गया, मगर वो आग नहीं है। कैसे, जैसे हमें मट्टी से पैदा किया गया, लेकिन हम मट्टी नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मजीद समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात को मुख्तलिफ चीजों से पैदा किया, इंसान को मट्टी और मट्टी की मुख्तलिफ चीजों से, और इबलीस सॉरी जिन्नों को आग से पैदा किया, टेम्परेचर उनका तेज है इंसानों की निस्बत, इंसानों के मिजाज में ठहराव होना चाहिए, नरमी होनी चाहिए, मिट्टी की खूबियां होनी चाहिए। जिन्नों और शैतानों के बीच में जो है वो एक किस्म का जोबन और जोलान है। इन सारी चीजों को बयान किया अल्लाह ताला ने, और इसके बाद क्या फरमाया आगे देखिए, फिर इसका मैं इंशाल्लाह इसमें से कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी। आयत 28, वइस काल रब्बुक लिल मलाइकतु इन्नी खालिकुम बशरुम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। और याद करो जबकि कहा था आपके रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूं एक बशर को, या नोट कीजिएगा, इन्नी खालिकुन आदम नहीं का बल्कि इन्नी खालिकुम बशरा, बशर की बात है, क्योंकि वरना तो हमारी सोच सिर्फ आदम तक रहनी थी। अल्लाह ताला ने यहां बशर की बात कर दी कि मैं बनाने वाला हूं एक बशर को सने हुए गारे की खन खनाती मिट्टी से। दोबारा वही लफ्ज इस्तेमाल हुए जो पीछे थे। फिर क्या होगा आयत 29, फैजा सवैतुहू, फिर जब मैं इसको पूरी तरह दुरुस्त कर दूं यानी इसकी क्रिएशन पूरी हो जाए, तस्विया हो जाए। ये जो सब वही तू का लफ्ज है ना, ये क्या है, आदम को बनाने के बाद उसको उसकी नोक पलक दुरुस्त करना। सूरत अल इन्फितार में आता है, अल्लजी खलकक फसवाक फआदलक, इसको समझ लीजिए, जिसने पैदा किया तुमको फिर आदलक तादील की, यानी दोनों जिस आंखें बराबर हैं, एक छोटी बड़ी नहीं है, कान दोनों बराबर हैं, आंखें बराबर हैं, हाथ बराबर हैं, ये होती है तादील, जिसको आप कहें कि इक्विलेट करना, जैसे हम दोनों बाजू कमीज के नाप के देखते हैं कि बराबर के हैं। फिर उसके बाद होती है तस्विया, तस्विया ये है जैसे आप अपने मुंह पे हाथ फेरे, चुभते हैं कांटे, कहीं कुछ मुंह पे आपको कोई घड़े पड़े हुए लगते, क्या होता अगर हम मुंह धोते, मुंह पे पानी डालते, हाथ फेरते और हमारे हाथ छलनी हो जाते, मुंह पे कांटे होते। ये स्किन जो मुलायम है ना, ये है सब वही चीज। जब बर्तन बनते हैं ना तो उसके बाद आखिर में उसकी पॉलिशिंग करना, आप कह लीजिए कि उसको बिल्कुल उसकी नोक पलक दुरुस्त की, जैसे किसी इमारत का ढांचा खड़ा करने के बाद उसको सजाया जाता है, रंग रोगन किया जाता है, पेंट किए जाते हैं। ये तो कर दिया, फिर व नफख तु फीहि मिन रूही, ये अगला मरहला है, और फूक दूं मैं इसमें अपनी रूह को। पहले जिस्म का बुत बना, गीला था, फिर उसको सुखाया गया, और उसके बाद फिर सारे मरहले पूरे हुए तो अब उसको अंदर से आबाद किया जा रहा है कि उसमें अपनी रूह को फेंक दो। तो क्या करना, फकाउलहू साजिदीन, तो गिर पड़ना इसके लिए सजदे में। फकाउ का लफ्ज है ना वका से, वो गिरी हुई अंदर है, छुपी हुई वो, वका कहते हैं गिरने को, यानी तुम गिर पड़ना यानी उसके अंदर हो जाओ। अब यहां देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल है, आयत 30 से अगली बात है, इसलिए हम इस सारे हिस्से को समझ लेते हैं। इंसान की और जिन की तख्लीक का फर्क पहले बता दिया गया। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि खुलक तल मलाइकतु मिन नूर, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए, व खुलिक अल जानु मिन नार, जिन्नों को आग से पैदा किया गया, व खलक अल आदमु मिम्मा वुसिफा अलैकुम, और आदम तो उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हें बता दिया, यानी खामाए मसनून की तरफ इशारा है। इससे पता चलता है तीनों मखलूकात मौजूद हैं। आप देखिए तीनों चीजों को अगर रिलेट करके देखें तो जिस्मानी तौर पे यानी फिजिकल बीइंग इंसान का जो मटेरियल है ना वो सबसे घटिया लगता है, राइट? क्योंकि आप देखिए ना कि आग भी कुछ चमकती है, नूर तो बहुत ही चमकता है। मट्टी का एक अंधेरा वजूद था इंसान का वजूद, बिल्कुल आप ऐसे सोचें कि जैसे कोई कच्चा घर बनाए मट्टी का, अब अंधेरा, उसके अंदर अल्लाह ने फनफख्तु फीहि रूही, अपनी रूह का एक चिराग डाल दिया। ये है असल में इंसान की वो कैफियत जिसको आप कह सकते हैं कि इंसान के अंदर आला अखलाकियात डाल दी। और साइंस सिर्फ पहले हिस्से को मानती है जिस्म को, रूह के हिस्से को नहीं मानती, इसीलिए सारा जोर जिस्म की कुव्वत, जिस्म की ताकत, ये खाओ बीमार ना हो जाओ, ये ना करो, इस पे रिसर्चेस हो रही हैं। रूह पे रिसर्च करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो ये रूह ही क्या है, ये इंसान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। देखिए इसकी जरा सी तफसीर गलत करे ना तो इतना बड़ा शिर्क है जिसके अंदर आज बहुत ज्यादा लोग मुलविस हो गए। लोगों ने इस लफ्ज से हलूल को जायज कर दिया, अंदर तू बाहर तू ऊपर तू नीचे तू, नऊज़ु बिल्ला लिख लीजिए, अल्लाह ने अपनी रूह नहीं डाली। नऊज़ु बिल्ला, इससे मुराद ये नहीं है कि अल्लाह ताला बंदे के अंदर आ गया, इससे मुराद निस्बत है। जैसे काबतुल्ला, बैतुल्ला, नाकतुल्ला, इबादुर रहमान सूरह फुरकान में हम पढ़ेंगे, इसी तरह अल्लाह ताला ने बंदे को इज्जत दी कि मैंने उसको अपने अपनी रूह डाली। यानी इंसान को मुराद इससे कहना यह है कि उसके अंदर नेकी का जज्बा डाल दिया। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि रूह ही के अंदर आप जो बात समझ सकते हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा ले लिया, उसको अपनी पहचान देकर दुनिया में भेजा। इतना क्लियर कट काम है कि अल्लाह के नबी, हम सब मिट्टी से पैदा हुए, इसके बावजूद देखिए कुछ लोग एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं नबी सल्लम को नूर कहने पे। और ये जो जुमला ना नूरुम मिन नूरिल्लाह, वो भी इसी जुमले की मिसअंडरस्टैंडिंग है। अल्लाह के नबी नूर से नहीं बने थे, आपने नूरानी काम किए थे। अल्लाह के नबी का वजूद मिट्टी का था जैसे हमारा है, लेकिन वही का नूर था उनकी जिंदगी में, जिसने आपको आला किरदार बना दिया। आप जरा सोचिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों मखलूकात में से किसके घर पैदा हुए थे? अगर अल्लाह के नबी को आप नूर कहते हैं तो मानिए कि अल्लाह के नबी का खानदान फिर फरिश्तों का खानदान था। और अगर अल्लाह के नबी का और कुछ नहीं चले नारी मखलूक से जोड़ते हैं तो क्या अल्लाह के नबी के खानदान में कोई जिन थे? अगली बात, अगर मुझे और आपको चॉइस दी जाती शुरू में, बोलो किस चीज से बनते हो, तो हम कौन सी चीज पसंद करते? अपनी अकल देखते तो मट्टी तो कभी ना पसंद करते, लेकिन मट्टी और आग का तकाबुल करके देख लीजिए, लिखिए सर अपने पास। क्योंकि इबलीस ने भी तो ये बहस की थी ना सूरह अल अराफ में कि तूने मुझे आग से पैदा किया तो मट्टी तो कम है। तो आप देखिए कि मट्टी के वजूद में जिंदगी है। एक बीज आप मट्टी को अमानतन देते हैं और हजारों बीजों की सूरत में वापस करती है। उसी एक बीज को आग में डालिए तो एक भी खत्म। मट्टी का वजूद रिप्रोड्यूस करता है, फिर मट्टी के मिजाज में ठहराव है। मट्टी जम जाती है ना तो उसके अंदर बड़े बड़े दरख्त और बड़ी बड़ी इमारतें हमारी खड़ी हैं। आग को रखिए जरा किसी इमारत की बेस को, आग लगाइए सारी इमारत ढह पड़ेगी। मट्टी के वजूद के अंदर आजजी है, दबना है, स्ट्रांगनेस है, आग में एक जुलान है, जोश है। जितने मर्जी तकाबुल करते जाइए कभी मट्टी आग से आग मट्टी से बेहतर नहीं हो सकती। इससे क्या पता चलता है कि बाहर कुछ चीजें हमें देखने में तैसी लग रही होती है कि ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जिसने पैदा किया उसको पता ये बेहतर है। देखिए मट्टी में अल्लाह ने पैदा की है। हाँ, ये ना सोचिए कि मट्टी कोई हकीर चीज थी, बल्कि आप इसको यूं समझ लीजिए कि सोना और लोहा दोनों चीजें लिख लें अपने सामने। सोना खूबसूरत भी है, कीमती भी है, लेकिन कभी आपने किसी सोने की कान में से गंदम का भी पौधा उगते नहीं देखेंगे, राइट? इसी तरह आप देखिए कि आपने हथियार बनाने हैं, कभी आपने सोने की तीर तलवारें देखी? वो लोहे की होती हैं। तो सोना तब खूबसूरत है जब वो जेवर में ढलता है। असल चीज तो ये है कि काम क्या करते हो। इंसान को यहां ये सबक सिखा दिया कि तुम्हें हमने किसी बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया। तुम अपने जिस्म को लेकर आओ, देखो, इसको लगाओ। जिस्मानी तौर पे इंसान का वजूद बहुत कमजोर है, बहुत सारी मखलूकात से हम हाँ कमतर हैं। मसलन हाथी का वजन हमसे बहुत ज्यादा होता है, उकाब बहुत दूर तक देखता है, हमारी नजर उससे बहुत कमजोर है। कुत्ते के अंदर जैसी सूंघने की हिस्से हमारे अंदर नहीं है। इसी तरह आप देखिए घोड़ा जितना तेज दौड़ सकता है हम नहीं दौड़ते। एक एक सिफत का तकाबुल करते जाइए जानवरों का इंसानों से। जिस्मानी तौर पे इंसान बहुत सारे जानवरों से पीछे है, लेकिन किस चीज ने इंसान को इज्जत दिलाई? व नफख तु फीहि मिन रूही। जो लोग जिस्म के तकाजे पूरे करते रहते हैं ना, फिर वो जानवरों से भी नीचे। कल अनाम बल हुम अदल, पीछे पढ़ चुके हैं सूरत अल अराफ में, तो पता क्या चला कि किसी इंसान का सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना, वो उसकी रूह का पॉइंट है। और मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसे दुबले पतले वजूद चलते फिरते हैं कि वल्ला ही उनके जिस्म के अंदर शायद ही सारे दिन में कोई 200-250-300 कैलोरीज जाती होंगी लोगों के बकौल। जिनका नाप तोल के देख लें तो हो सकता है 10 12 13 साल के बच्चे बच्ची के बराबर उनका वजन हो, लेकिन उनके इरादे, उनके अजम, उनके अजायम वाकई पहाड़ों को हिला दे अपनी जगह से, दुनिया उनकी ठोकर से सहरा दरिया। असल आपका और मेरा जो वजन है ना, ये हमारी इस रूह का वजन है, और ईमान मजबूत हो तो बीमार जिस्म भी बंदे को काम करवा देता है उसे, और रूह बीमार हो तो मोटे खाए पिए जुस्से हमारे मिट्टी के लाशें बन जाते हैं। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इस वजूद की फिक्रें की, हम इस जिस्म की बीमारी को रूह की बीमारी का जरिया बना लेते हैं। ये जुमला लिखिए और बाद में इस पर गौर कीजिए, जिस्म बीमार हो बंदा रूह की खुराक ना छोड़े तो जिस्म में भी ताकत आ जाती है, और जिस्म बीमार हो, आप उसको पोलन कहें, आप उसको बैक्टीरिया कहें, उसको वायरस कहें, मौसम का असर कहें, अपने किसी जुर्म के सिवा हर वजह समझ लें, और अगर आप उसको रूह की जरा मजबूती तो देखे देखें कैसे खड़ा हो जाता है। आप पता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो इतने दुबले पतले थे कि तहमत जब बांधते ना तो वो थोड़ी देर में लटक के ना नीचे आ जाता, तो शल जो अपनी धोती टखनों से ऊंची रखी होती थी वो टखनों पे आ जाती थी। जब अल्लाह के नबी सल्लम की जुबान मुबारक से वो रिवायत सुनते हैं कि उन लोग जिन वो चंद लोग जिनकी तरफ अल्लाह ताला क्यामत के दिन ना देखेगा, ना उनको पाक करेगा और ना उनसे मोहब्बत करेगा, उसमें एक वो शख्स है जो टखनों से अपनी तहवर नीचे करता है। तो अबू बकर रोने लगे, अल्लाह के नबी मैं क्या करूं, मैं ऊपर बांधता हूं ये फिर नीचे हो जाती है, गोश्त ही नहीं था कि वो उसको सहारे। तो उस पर अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अबू बकर तू उनमें से नहीं है। अब्दुल्ला बिन मसूद इतने दुबले पतले थे कि जिसको आज की जुबान में आप कहें कि हवा चले तो उनके उड़ने का खतरा बढ़ जाए। एक दफा खजूर की दरख्तों पर चढ़ के खजूरें उतार रहे थे तो मुनाफिकों ने खड़े होकर उनकी पतली पतली टांगों का मजाक उड़ाया था, तो अल्लाह के नबी को पता चला, तो आपने कहा कि इब्ने मसूद की इन टांगों का मजाक उड़ाने वाले को ये नहीं पता कि कल इब्ने मसूद की एक एक टांग उहुद पहाड़ से ज्यादा वजनी होगी। किस चीज को हम पैम्पर कर रहे हैं, मुझे तो अपना ये फिक्र लगा हुआ है। आज इंसानियत किसको सर्व करती है, ग्रोसरी स्टोर्स किसको सर्व करते हैं, क्लोथिंग स्टोर किसको सर्व करते हैं, फर्नीचर स्टोर किसको सर्व करते हैं, उन सब को छोड़ दीजिए, उनका तो बिजनेस है, मैं और आप सारा दिन किन मुसीबतों में पड़े रहते हैं, हमारे गम क्या है। मेरा दिल मैं अक्सर सोचती हूँ कि कभी हम गैब के पर्दे में झांक के कभी जरा अल्लाह की नजरों को अपने ऊपर लेके देखें तो हमारे आप हम आईना देखना छोड़ दें, और हम मैं इस वक्त अपने आप को कह सकती हूँ, आपको तो नहीं कह रही, यकीन करें हम बंदे के हैं, हम हैं क्या, चार लोगों की नजरों में जचने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, और वो रब जो हमें देखता है उसके सामने हमारा क्या हाल होता है। तो ईमान वाला सारी जिंदगी जिस्म को नहीं पूछता, ये जो आज चारों तरफ आपको जिस्म की राहत के सामान दिखते हैं ये मुसलमान स्टेट्स में कोई नहीं होते थे और नहीं होंगे इंशाल्लाह जब इस्लाम आएगा। लोगों को फुर्सत ही नहीं कि पार्लर्स में 6 6 घंटे जाके बैठे, जाके वो डॉक्टर्स की दुकान पे 8 8 10 10 घंटे की अपॉइंटमेंट्स लें। अंदर मजबूत करते थे वो लोग पहले दौर में, आप छोड़िए इस बात को, सिर्फ थोड़ा सा 20 25 30 साल पीछे चले जाइए, हमारे बड़े क्या करते थे, कहते थे खुराक अच्छी खाओ, डॉक्टरों पे नहीं जाना, घर में इलाज करो, पक्की खाओ, चूरन खाओ, कोई अल्लाह ना करे डॉक्टर पे जाए तो सारे खानदान को फिक्र लग जाती थी कि डॉक्टर पे गया। आज पहले तो बीमार होते थे तो डॉक्टर पे जाते थे, आज तो इस संदेशों में डॉक्टर पे जाते हैं कुछ हो ना जाए, क्या है जी रेगुलर चेकअप है। देखिए मैं किसी पे कोई बात नहीं कर रही ना, मुझे और सब बीमारों से के लिए दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन याद रखिए इलाज कहीं और है, हम ढूंढते कहीं और है। ये बात उनको नहीं समझ आती जिन्होंने कुरान से नहीं इस तरह ताल्लुक जोड़ा, ये हमें समझ आनी चाहिए जिनका कुरान से ताल्लुक है। इस किताब के अंदर जिस्मानी कल्बी रूहानी ताकतों का सरचश्मा है। जिस दिन आप बीमार हो उस दिन लोगों से कहे मुझे डॉक्टर पे छोड़ने की बजाय मुझे यहां छोड़ जाओ ताकि मैं यहां बैठूं, और ये आज मैं कह रही हूं, अल्लाह ना करे कल मैं ही इतनी बीमार हो जाऊं, मैं आप सबको भी कहूंगी कि अगर आपको कभी मेरी तरफ से कोई ऐसी बात लगे तो आप मुझे रिक्वेस्ट करें कि आप आके बैठ जाएं, हम रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे, आके बैठ जाएं, ये आपका मेरे ऊपर एहसान होगा क्योंकि घर में बिस्तर पे तो हो सकता है मैंने कराहते रहना, यहाँ आके मुझे एहसास ही नहीं होना। तो अल्लाह ताला ने इंसान को यहाँ ये समझा दिया कि सिर्फ जिस्म है तो जानवरों से अबतर हो, लेकिन रूह डाल के हमने तुम्हें बहुत कुछ कर दिया। और असल भी आप देख लीजिए कि अल्लाह की जात है जो इज्जत देती है, मट्टी को इतना हुसन दे दिया उसने। कुछ चेहरे देखकर कभी राह जाते मैं खड़ी होके सोचती हूँ, अल्लाह तूने मट्टी को इतना हुसन दिया। तो जब असल खूबसूरत जन्नत की औरतें होंगी वो कैसी होंगी? कभी आप मासूम बच्चों को देखा करें, ऐसे ही लगता है गुलाब की पंखड़िया, नरम प्यारे मुस्कुराते। अल्लाह कहता है ये मट्टी का कमाल है, यानी मट्टी का बर्तन और देखने में शीशे की तरह चमके, क्या कमाल है। तो सोचिए फिर जब असल में इंसान जन्नत में जाके अपने अखलाक के मटेरियल से बनेंगे तो वो क्या होंगे। तो याद रखिए, व नफख्तु फीहि मिन रूही के बाद कहा फकउ लहू साजिदीन, या नोट कीजिए, आदम के मट्टी के बुत को फरिश्तों के आगे, यानी आदम के मट्टी के वजूद के आगे फरिश्तों को नहीं झुकाया था, बल्कि किसके आगे झुकाया था, व नफख्तु फीहि मिन रूही। इंसान की अगर इंसान अगर अच्छे वसफ पैदा कर ले तो फरिश्ते उसके आगे सजदा करते हैं। कहते हैं ना कि इंसान अगर अच्छे काम कर ले तो फरिश्तों से आला, और बुरे काम करे तो शैतान से भी बुरा। तो ये भी एक ऐसी बात है इसमें कि इंसान अच्छे काम कर कर फरिश्तों से भी आला हो जाता है। फरिश्तों ने क्या किया इस हुक्म को सुन के, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तो सजदा किया तमाम फरिश्तों ने मिलकर। देखिएगा अजमाउन पे, ये नहीं कि एक उठा फिर गया ढीला ढाला, अच्छा जी एकदम हैंड्स अप, सबके हाथ खड़े, खड़े हो जाओ सब खड़े, चल पड़ो सब चल पड़े, बिल्कुल एक फौजदारी का डिसिप्लिन दिखता है। अल्लाह करे हमारे अंदर भी याद है, हम तो बात सुन के भी कितनी देर पहले सोचते हैं कि अच्छा ये तो मेरे लिए तो नहीं है। कुल्लुहुम सारे अजमाउन यकमुश सारे उठ पड़े, यानी ताकीद दर ताकीद है कि फरिश्तों में कोई एक भी नहीं था जो अल्लाह का ये हुक्म सुनकर बैठा रहा। उसमें जिब्राइल भी थे, मिकाइल भी थे, इसराफील भी थे, और सारे फरिश्ते थे, सब झुक गए। हाँ मगर एक नहीं झुका, कौन? इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। क्यों? अबा, इनकार किया। किस बात से? आई यकू नवाज साजिदीन, कि वो सजदा करने वालों के साथ हो। अबा कहते हैं शिद्दत इनकार से किसी चीज से रुकना, अनकारा युन की रू, इससे हल्का दर्जा है। अब देखिए एक लफ्ज ना इनकार, ये भी अरबी का लफ्ज है जो हम बोलते हैं, लेकिन इनकार में इतनी शिद्दत नहीं है जितनी अबा में है। सूरह बकरा में भी पढ़ते कि अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, उसने तकबर किया, यानी रिजिस्ट करने का मानी मुझे समझ आ रहा है इस लफ्ज को पढ़ते हुए, रिजिस्ट किया। हाँ हूँ, मुझे कहा क्या कहते हैं, फिर बुड़बड़ाता हुआ उठा। नहीं, सूरह कहफ की आयत 50 में हम पढ़ेंगे कान मिनल जिन्नी, तो गोया कि वो जिन्नों में से था। वहां क्यों आ गया, इस पे हम बात कर चुके कि वो इंसानों शैतान सॉरी वो फरिश्तों के साथ बैठकर फरिश्तों में आ गया था। और इसी तरह बाज कहते हैं कि कहकर फरिश्तों को, पूरी मखलूकात को झुकाया गया था आदम के सामने। दोनों ही बातें ठीक है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असल तो हमारा काम आगे। खैर, इबलीस ने इनकार किया। काला या इबलीस, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाया या इबलीस, ओ इबलीस, मालका, क्या है तुझको, तू क्या समझते अपने आप को, क्या है क्या तू, तेरी हस्ती क्या है, अल्लाह तकूना मा साजिदीन, कि तू सजदा करने वालों में ही ना हुआ, तू क्या समझते अपने आप को, बड़ी अकड़ है तेरे अंदर, सारे सजदा कर रहे हैं तू नहीं कर रहा। डायरेक्ट अल्लाह ने इबलीस से क्वेश्चन किया। अब जरा इस गुस्ताख का जवाब सुनिए और इसको हाईलाइट कीजिए, और अपने जुमलों को हम खुद नोट कर लें कि कहीं शैतान की तरह हम भी इसी तरह की गुस्ताखियां तो नहीं करते। क्या? काला लम अकुन सॉरी, काला इबलीस बोला, उसने कहा लम अकुन लिया सजुदा ली बशरिन, मेरे लिए ये रवा नहीं है कि मैं सजदा करूं किसी बशर को। कौन सा बशर? खलकतहू मिन सलसाले मिन हमाई मसनून, जिसे तूने पैदा किया खनखनाती भी गारे की मट्टी से। यहां से देखिए कि इब्लीस को भी हमारी असल पता है। ताना दे रहा कि अल्लाह ताला तू उस आदम के आगे मुझे झुकाता है जिसको तूने गले वे गड़े गली भी मट्टी से पैदा किया। जी सब ना उठ के जाए, बैठ जाए प्लीज। यानी जिस इंसान को तूने हमारे मसनून से पैदा किया उसके आगे मुझे झुकाता है। क्या कर रहा है अल्लाह के हुक्म के आगे? जुबान चला रहा है। देख लीजिए इस आयत के आगे जुबान चलाता है। एक तो बात नहीं मान रहा और आगे से देखिए पटर पटर बोलता है, रीजनिंग कर रहा है, लॉजिक्स पेश कर रहा है, ये है और वो है, और तू इस तरह मुझे उसके आगे झुका रहा है जो बहुत ही है। और क्या कर रहा है? अकल का इस्तेमाल कर रहा है। قال فخرج منها فإنك رجيم। अल्लाह ताला ने फरमाया बस तू निकल जा इनमें से, तुम यकीनन मर्दूद हो चुके हो। किस में से निकल जा? मिनहा, जन्नत से निकल जा, एक तफसीर, और जुमरतुल मलाइका यानी फरिश्तों के गिरोह से निकल जा, तू निकल जा। सूरह अल आराफ में आता है फहबित मिनहा, निकल जा। सूरह बकरा में क्या आता है? फहबितु मिनहा जमिया, सब निकल जाओ। अल्लाह ताला ने फौरन एक शाही फरमान दे दिया कि यहां से निकल जाओ, तुम मर्दूद हो, रजीम रजम शुदा हो। और साथ ही साथ वइन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, और यकीनन तुम पर लानत रहेगी रोजे जुजा तक। कितनी लानतें और कितनी बातें इसमें आई हैं। लफ्ज लानत सुन के इंसान कांप जाता है। पहले जन्नत से निकलवाया, उसको रजीम कहा, लानत उस पे पेश की, और कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। आज भी कितने काम है जिसपे अल्लाह ताला की लानत की बात है लेकिन हम वो नहीं छोड़ पाते। अल्लाह ताला कहते फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, फिर भी झूठ बोलते हैं, और दलाइल के साथ झूठ बोलते हैं। खैर अब इसकी जरा अकल ठिकाने आई। काला रब्बी, ए मेरे रब, ये लफ्ज रब्बी को नोट कीजिए। ये भी नहीं बेचारा कह रहा कि रब्बे आदम, रब्बी इब्राहिम, रब्बी मोहम्मद, ब्राह रास्त रब को पुकार रहा है। फानजिर नीला यौमी युबअसून, रब्बी फानजिर नीला यौमी युबअसून, ए मेरे रब मुझे मोहलत दे दे उस दिन तक जब ये दोबारा उठाए जाएंगे। नोट कीजिए, अपने उठाने की बात नहीं कह रहा, ये दोबारा उठाए जाएंगे। अच्छा, قال فإنك من المنظرين, अल्लाह ने भी एक शाही फरमान की तरह कहा जब मांगो जो मांगते हो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम्हें मोहलत दे दी गई जो तुमने मांगा उसकी। किस चीज की मोहलत मांगी? नंबर एक लंबी जिंदगी, और दूसरी दूसरों को बहकाने की मोहलत मांगी। कब तक? इला यौमिल वक्तिल मालूम, वक्त मुअय्यन के दिन तक। ये कौन सा दिन होगा? रोजे क्यामत तक तुम जिंदा रहोगे। वैसे तो जिन्नों की उम्र इंसानों से काफी ज्यादा होती हैं, मगर कोई ऐसा जिन नहीं जो इब्तदाए खल्क तखलीक से लेकर आज तक जिंदा हो, सिवाय इस एक जिन को जिसको इबलीस कहा गया। इजाजील इसका नाम रिवायत में आता है। आज जितने भी लोग हैं वो इसकी औलाद और उसकी जुर्रियत है। अब इसको समझ आई कि अच्छा ये बात भी मानी गई है, तो बोला काला रब्बी बीमा हुए तनी, फिर रब्बी दोबारा कहने लगा मेरे परवरदिगार चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है। किस पे अपने भटकने का इल्जाम लगा रहा है? अल्लाह पे। चूंकि तूने मुझे भटका दिया, लउज़य्यिनन लहुम फिल अर्दी, तो यकीनन मैं खूबसूरत कर दिखाऊंगा इनको जमीन, यानी मैं मुज़य्यिन कर दूंगा इनके लिए दुनिया को, हालांकि दुनिया तो अल्लाह पहले ही बना चुका था। तो ये दुनिया को कैसे खूबसूरत करके दिखा रहा है? आखिरत के मुकाबले में गुनाहों को खूबसूरत कर रहा है, नाफरमानियों को खूबसूरत कर रहा है। वाला उग्वियन्नहुम अजमाइन, और अलबत्ता जरूर मैं गुमराह कर दूंगा इन सबको, सबको बेकार दूंगा, दुनिया में ऐसी कशिश डाल दूंगा, बेकार होते हुए भी लोगों को सबसे हसीन यही लगेगी, तेरे हुक्मों को भूल जाएंगे, इस दुनिया में खो के रह जाएंगे, इतनी खूबसूरत आखरत पसे पुश डाल देंगे, सब पीछे आएंगे। हाँ मगर एक किस्म ऐसी है जिन पे मेरा जोर नहीं चलेगा, और वो क्या? इल्ला इबादका, पहले नोट कीजिए, मगर तेरे बंदे। इबादका कौन से? मिन हुमुल मुखलसीन, इनमें से जो खालिस किए गए। اللہ اکبر. شیطان جن سے ڈرتا ہے وہ ہے مخلص. دیکھیے لفظ مخلص ہے, پیچھے بھی بات ہوئی, یہ بار بار آئے گی بات. ایک لفظ ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص. مخلص ہوگا تو کیا بنا؟ فاعل, سبجیکٹو نہیں, آبجیکٹو, سوری, انگلش میں کام کرنے والا. اور مخلص کیا ہے؟ مفعل کا وزن جو خالص کر لیا گیا. یہ کون سا ہے؟ سبجیکٹو. دونوں میں فرق کیا؟ دیکھیے ایک وہ شخص ہے جو مخلص ہے, ابھی تک سٹرگل کر رہا ہے کہ میرے اندر اخلاص آ جائے. شیطان اس سے نہیں ڈرتا, اس کو بھی بہکا لیتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن سنت طریقے نہیں ہیں, وہ بڑے خلوص سے شرک تک کر رہے ہیں. کئی لوگ ہیں جو غلط سے غلط کام کرتے ہیں لیکن اندر سے نیتیں بڑی اچھی ہیں. مخلص کون ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ اسوہ حسنہ پہ عمل کریں, سنتوں پہ عمل کرنے والا. اللہ کی رضا کے لیے جب کام کر رہا ہے نا, ایسے بندے پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. تو گویا کہ شیطان نے خود اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا کہ جس چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے نا وہ اخلاص ہے اور اس کے ساتھ سنت طریقے ہیں. لوگ دین کے نام پہ جو مرضی کریں, اخلاص کے ساتھ کریں, میں ان کو بھی بہکا دوں گا. لیکن جنہوں نے یہ باندھ لیا کہ ہم نے نبی کے طریقوں سے ادھر سے ادھر نہیں ہونا, ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات سن کے فرمایا, قال ھذا صراط علی مستقیم, فرمایا یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے. کون سا راستہ ہے یہ؟ اخلاص کا راستہ. مخلص بندہ ہی وہ بندہ ہے جو صراط مستقیم پہ. اللہ کہتے ہیں یہ بات ڈن, معاملہ طے, تمہیں مہلت دے دی. مجھ تک پہنچنے کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے. تم بہکا لو کر لو, لیکن تمہیں بتا دوں کہ ان عبادی لیس علیک علیہم سلطان, یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا. یعنی صرف مخلص نہیں بلکہ کسی بھی انسان پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور پیچھے پڑ چکے سورہ ابراہیم میں شیطان خود اس کا اقرار کرے گا قیامت کے دن کہ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا, اللہ, ہاں صرف تیرے ہاتھوں میں وہی ترن والا بنیں گے. کون؟ من تبعک من الغاوین, جو خود تیری پیروی کریں گے سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں گے گمراہوں میں سے. یہ ہے غاوین, غاوی کی جمع, جن کے اپنے اندر سرکشی ہوگی, جو اپنے طور پہ نفس پرستی کی طرف مائل ہوں گے, جو خود اپنے ہی پجاری ہوں گے, وہ تیرا نام لے کر تیری طرف مائل ہو جائیں گے. اب تو جہاں رہے یا جہاں وہ رہے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور یقیناً جہنم ان سب کا کے وعدے کا ٹھکانہ ہے. موعد کہتے ہیں وہ جگہ جس کا وعدہ کیا ہو, یعنی جس جگہ تم سب کو پھینکا جائے گا وہاں جانے کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیسی ہے وہ جو جگہ؟ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, اس جہنم کے 7 دروازے ہیں, 7 doors of heaven. لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, ان میں سے ہر دروازے کا ایک حصہ ہے مقرر کردہ. یعنی جہنم کے ہر دروازے میں سے داخل ہونے والے جنوں اور انسانوں کے لیے مخصوص ہے, ان کے گناہوں کے اعتبار سے, ان کے درجوں کے اعتبار سے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو تیرے ہاتھ میں آ جائیں گے, لیکن اس کے برعکس, ان المتقین فی جنات و عیون, اس کے برعکس متقی لوگ ہوں گے باغات اور چشموں میں. کیا کہا جائے گا ان سے؟ ادخلوها بسلام آمنین, ان سے کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ, ان سے کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ, بے خوف و خطر, کوئی فکر نہیں, امن چین, کوئی اندیشہ نہیں. یہ تو ہم کہیں گے, لیکن انہوں نے بھی تو کچھ روگ پالے ہوئے تھے, اس کا کیا علاج ہے؟ آیت 47, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی کدورت ہوگی, ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی کدورت ہوگی, برے جذبے ہوں گے, اینیمیٹی ہوگی, جو دلوں میں بغض آ جاتا ہے وہ ہوگا, ہم اس کو نکالیں گے. سورۃ الاعراف آیت 43 میں بھی ہم یہی بات پڑھ چکے, سب رنجشیں, کدورتیں, شکایتیں, ये सब निकाल देंगे, हत्ता कि क्या होगा, इख्वानना ला सुरुरिम मुतकाबिलीन, भाई भाई बनकर वो बैठे होंगे तख्तों पर आमने सामने। जब किसी से नाराजगी होती है ना तो इंसान उससे आंखें नहीं मिलाता, लेकिन चूंकि अहले जन्नत के दिल एक दूसरे से बिल्कुल साफ होंगे तो जैसे शीशे के सामने इंसान बैठ के अपने आप को देखता है, इस तरह वो शीशे जैसे साफ दिलों के साथ अपने भाइयों से बातें करेंगे। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन, नहीं पहुंचेगी इनको इसमें कोई भी तकलीफ थकन, क्योंकि मेहनत तो सारी दुनिया में करके आए, दुनिया जन्नत में तो दुनिया में तो कोई टाइम मिला ना इनको, वहां तो थकते रहे लेकिन जन्नत में तो कोई मुश्किल नहीं। वो मा हुम मिनहा बिमुखरजीन, और ना ही वो इनमें से निकाले जाएंगे, वहां इनको मिलेगा ये सब कुछ, कोई खटका नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बस एक दफा निकल गए। वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, वही लफ्ज है, मुखरिज नहीं है, मुखरज है। किसी में जरूरत नहीं है कि जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद वहां से निकलने की बात कर दे। और ये सारी बातों के बाद लोगों को एक बात सुना दो, और वो क्या, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को इस बात की खबर दे दो कि मैं यकीनन बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला हूं। एक तरफ तो ये हाल है तुम्हारे नदामत भरे दिलों के ऊपर, जब आंसू गिरते हैं शर्मिंदगी के तो मैं तुम्हें माफ कर देता, जब तुम मेरे बंदों पर रहम करते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहम का मामला करता हूं, और अगर ऐसा नहीं तो दूसरी भी सूरत है, वन्नाज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और ये कि मेरा अजाब भी बहुत दर्दनाक है, हूं मैं गफूर रहीम मगर मेरे अजाब बड़े सख्त है, किस पर, जो निडर होकर गुनाह करे, जो दिलों में खोट कपट रखे, जो अपने नफ्स को बड़ा समझे। यही है कैफियत जिसको ईमान की तारीफ में शामिल किया गया कि अल ईमान बैन अल खौफ व रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के बीच की चीज का नाम है, अल्लाह की रहमत और मगफरत की उम्मीद होना और अपने गुनाहों का खौफ होना। डे वन पे अल्लाह ताला ने आदम और इबलीस के इस किस्से में कायनात का क्रिएशन प्लान समझा दिया, दोस्त और दुश्मन का फर्क बता दिया, और शैतानी रवैये भी बता दिए, काम सारे गलत खुद करता है और दूसरों के साथ बड़ी बात करता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो फिर दुनिया में आकर शैतान के क्रिएशन प्लान, शैतान के प्लान्स को हवा देते हैं। जैसे किसी ने एक छोटी सी कोटेशन सी भेजी, ऐसे ही एक एज्यूम शक्ल बनी हुई है इबलीस की, कांप रहा और कह रहे कि भाइयों मुझे तो अब 1 महीने के लिए कैद किया जाने वाला है, यानी रमजान की आमद है, तो उस पर किसी ने लिखा था, लेकिन मेरे बच्चों तुम अपना काम करते रहना, और उसके जो बच्चे नीचे बने हुए ना, सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, मेरा अपना कोई, एक के ऊपर फेसबुक लिखा हुआ है, एक पे यूट्यूब लिखा हुआ है, एक पे कुछ और लिखा हुआ है, यानी कि इसका गलत इस्तेमाल करवाते रहना, अब मैं तुम्हें रमजान के बाद मिलूंगा। आज मैं और आप इन सारी बातों को अब मेरे बगैर किसी इजाफे के सुन रहे थे, सिर्फ मैंने आपके सामने तर्जुमा रखा है हल्का सा उसको खोलने के लिए। किसको ये कहानी नहीं पता, किसको ये इबलीसी रवैये नहीं पता, और कितने हैं फिर वही काम करते हैं जो इबलीस ने किए। क्या कसूर था शैतान का, रब भी मानता, रब को रब मानता ना, इबादत करता था लेकिन क्या नहीं कर सका, इताअत नहीं कर सका। एक जुमला बड़ा बड़ा लिखे, पूरे रमजान में आपने 20 बार लिखना है, तो आप एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ले दें, आज से लिख लीजिए कि इबादत करना और बात है, इताअत करना और बात है। इबलीस इबादत गुजार बना, इताअत गुजार नहीं बन सका, और आज भी इंसानों में अक्सरियत का यही हाल है, इबादत शौक से करते हैं, इतात करने के लिए फिक्र में पड़ जाते हैं। वही रब कहते हैं अकीम उस्सलात, तो नमाजें पढ़ते हैं, और वही कहता है कि छोड़ दो रिबा को, तो सोच में पड़ जाते हैं। 5 वक्त के नमाजी तहज्जुद गुजार भी सूद से अपने आप को पाक नहीं कर पाते, हराम से खुद को पाक नहीं करते, एक जुबान से सारी बातें। मैं इस बात को कहते हुए सिर्फ अहमियत दिलाने के लिए आपको छोटा सा बताऊं कि हमारे कल्चर में पैदा होने के बाद बच्चों की के खतनों का हुक्म है ना, सबको पता है ना, और अकीके का भी सबको पता है। आप अपने सारे जानने वाले अगले पिछलों को जहन में ले आइए, किसी का बच्चा पैदा हो, क्या कभी आपने एक बार भी सुना कि बेटा पैदा हुआ लेकिन उन्होंने कहा हमने नहीं इसके खतने कराने या हमने इसका अकीका नहीं कराना? वो तो बड़े होने पे भी उनके अकीके करते हैं। लेकिन सेम हदीस है जिसमें खतनों का भी जिक्र है और उसी में मूछों के दर्शवाने का भी जिक्र है। एक हदीस है, चार चीजें, अभी इसकी बात नहीं करूंगी। अपनी मर्जी की एक चीज तो ले लेंगे और बाकी चीजें किधर है? दाढ़ी कट चीज में, जिस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लम की बातों का पता चलता है, बाकी का छोटी छोटी बातों पे हम बहसें करते हैं, इतने बड़े हम दीनदार बनते हैं, फितने खड़े करते हैं, लेकिन हम सुन्नतों को नहीं मानते, गेटअप खराब होते, टखनों से शलवार नीचे करने की सुन्नत को हम नहीं मानते, हम नमाजों के वक्त की सुन्नतों को कितना बड़ा मसला बना लेते हैं। तो याद रखिए, ये इब्लीसियत है। इस पूरे सबक में आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सूरत बनी इसराइल में जब ये किस्सा आएगा तो इतना खुल के शैतान हमारे सामने आ जाएगा, कैसे लगेगा कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम सब अपने आप को चेक करें, हमारा रवैया शैतान वाला है। इधर आदम की कोई बात नहीं आई, आपने नोट किया होगा, सूरह बकरा में उसके ऊपर बात हुई थी। यहां क्या बताया जा रहा है कि इंसान तो अपनी असल देख, तू है क्या? अगर तू उन्हीं सिफली जज्बों पे पड़ा रहा जो जिस्म के तकाजे हैं, तो फिर शैतान के हाथों में तरने वाला बनेगा। बंदे की असल वैल्यू जो है ना, उसका इखलास है। खालिस बंदे पर ना तो माहौल का असर होता है, ना मशरिक और मगरिब का असर होता है, ना उसके ऊपर रमजान और गैर रमजान। आप देखिए कि खालिस बंदे को आप ऐसे सोचिए जैसे सोना, सोना हर हाल में चमकता है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो ना तो साथ आपको बुकलेट मिलेगा कि पहले इसको पढ़ ले, इसको पानी ना लगे, इसको पसीना ना लगे, इसको परफ्यूम ना लगे। अब आपको कोई चीज मिलती है, आपको नहीं पता चल रहा कि ये सोने की है या पानी सोने का चढ़ा है या पीतल की है, कैसे पता चलेगा? डिबिया में बंद रखी रहेगी ना, कभी नहीं पता चलेगा, बनी बहुत खूबसूरत होगी, बिल्कुल सेम लुक। पता कब चलेगा? जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम क्या है, ये डिबिया में बंद बैठे हुए हैं ना, कोई नहीं पता चल रहा इस वक्त भी। जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में जाते हैं ना, कुछ की तो चमक 2 दिन में मिट गई, कहते ओहो निराल पीतल ही था, देखो 4 दिन भी नहीं चली। ले जाए जाके आप कंपनी को, आप कहते हैं आपने तो 1 साल की गारंटी दी थी, वो कहता है ये देखे पानी डाला तो पानी में आधी डाला था, ये पहली बात लिखी, इसको पानी ना लगे, इसको कहीं ब्लीच डाल के धो तो नहीं लिया, कोई गारंटी नहीं देगा। सोना टूट भी जाए, सोने को जला भी दें, उस पर काला नीला रंग करा लें, जाएंगे फिर कीमत दे जाएगा। और आर्टिफिशियल चीज चमकती भी आज ले आए, पहले दिन आपको वो बता देंगे कि रीसेल कोई नहीं है। देखिए जाहिर देखने में सोना बहुत महंगा होता है, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि आर्टिफिशियल चीजें जो हम इतनी महंगी खरीदें, मिलना कैन पे, एक तो जान सूखा, जान का सोखा, हर वक्त का फिक्र, फिर दूसरी बात यह है कि कल जरूरत पड़ेगी तो बेच ही नहीं सकते, वो तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन खरीद लिया। खूबसूरत तो वाकई वो बहुत लगता है, हालांकि सोना क्या होगा, आपके नहीं किसी और के काम आ जाएगा। तो इंसान जो है ना, वो सोने की तरह मुखलस, लेकिन बस दफा हमारे ऊपर सिर्फ सोने का पानी चढ़ता है। अब ये 13 पारे हम सबको अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। सब लोग शैतान के आगे हार जाते हैं कोई ना कोई नाम लेकर, और शैतान जिन लोगों के आगे हारता है वो है इल्ला इबादक मिन हुमुल मुखलसीन, तेरे मुखलस बंदों पे मेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इसलिए आज इसकी हम फिक्र करें कि हम मुखलस बने। हम ये बातें बढ़ाते रहते हैं, इखलास कोई नहीं होता, सुन्नत तरीका नहीं होता। हम गिनते हैं बालिश्तों से कितने नफिल पढ़े, कितने काम किए, कितने सिपारे पढ़े। जिस चीज को आज के बाद अगर आप और मैं बढ़ा सके वो हमारा इखलास है, और इखलास समझ ही नहीं आता जब तक रब की रबूबियत और बंदे की अब्दियत ना समझ आए। इसीलिए अल्लाह ने हमें मौका दिया तो फिर रमजान में अपने आप को चेक करेंगे। ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ अभी हमारे ऊपर पानी चढ़ा सोने का, अभी अंदर बड़े घोट खपट है। फिर आप देखिए कि जो यहां बात की गई है कि दिलों के बुगज खत्म करेंगे। एक कॉल लिखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इधर भी रिकॉर्ड हो जाए, वरना इंशाल्लाह हम दोबारा भी इस पे बात करेंगे। ये जो दिलों की गंदगी होती है ना, ये बंदे को नेकियों से कैसे महरूम कर देती है, जाहिर नहीं पता चलता। हम कहते हैं नहीं हमारा दिल साफ है, नहीं, दिल में जब किसी के लिए मैल आता है ना, तो अल्लाह ताला बंदे को कोई ना कोई बहाना बनाकर किसी नेकी से दूर कर देगा। ये एक इतना बेसिक क्राइटेरियन है कि अगर मैंने अपने लिए अपनी जिंदगी में भर लिया तो मैं कभी भी अपने दिल को गंदा रख के रात को नहीं सोऊंगी। एक रात एक सहाबी की तहज्जुद कजा हुई तो अगले दिन रोने लगे। लोगों ने कहा सबर करो, कोई बात नहीं, नमाज कजा हुई है। कहते नहीं, मैं नमाज तहज्जुद की नमाज के कजा होने पर नहीं रो रहा, वो तो नफिल थी, मैं वो गुनाह ढूंढ रहा हूं मेरे जिस गुनाह की वजह से मुझसे ये नेकी मिस छिन गई। लोग नेकियां से महरूम कर दिए जाते हैं कब, जब उनके दिलों में बुग़्ज़ होता है। हदीस सुनाती हूँ, इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु, उनसे किसी ने पूछा कि आप लोग रमजान को वेलकम कैसे कहते थे, हाउ डिड यू ऑल वेलकम रमजान। हम भी तो अब रोज दरसों में यही लोगों से पूछ रहे हैं, अच्छा क्या तैयारियां की हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। जरा इब्ने मसूद का जवाब सुनिए, और इसको अगर कहना चाहूं कह लूं कि गोल्डन मार्कर से लिख लीजिए अपने दिल की तख्तियों पे। कहने लगे कि हम में से कोई ऐसा नहीं था कि जो रमजान का चांद देखता और उसके दिल में दूसरे किसी मुसलमान के बारे में एक जर्रे बराबर भी कोई नेगेटिव जज्बा होता। इंग्लिश में पढ़ के सुना देती हूँ। ही रिप्लाइड, नन ऑफ अस वुड वेलकम द क्रिसेंट एंड इन हिज हार्ट वॉज एन एटम वर्थ ऑफ हेटेड टूवर्ड्स हिज ब्रदर मुस्लिम। हम में से कोई ये कह सकता है? हमें तहज्जुदों और तरावियों ने और नमाजों ने क्या देना है अगर दिल में गिल होगा? तो लिहाजा जरूरत है इस बात की कि अपने दिलों को दुनिया में साफ कर लें, फिर जन्नत में जाके जो होना है ना वो यही हो जाएगा। फिर आप देखिए कि मुखलस बंदा किस किस चीज से होता है। शिर्क से मुखलस होता है, रियाकारी से मुखलस होता है, तारीफों तनकीद से मुखलस हो जाता है। पीछे भी सुर रात में पढ़ चुके हैं ना, जब भट्टियों में डाला जाता है किसी धात को तो खालिस चीज अलग हो जाती है। पता क्या चला कि हर बंदा शैतान के फंदे में है, लेकिन मुखलस पर शैतान का जोर नहीं चलता। एक रास्ता है जिससे शैतान लोगों को बहुत जल्दी फांस लेता है, और वो है दूसरों की तारीफों में आ जाना। लोगों की तारीफों में आकर बहुत सारे लोग शैतान के हाथों में आ जाते हैं। और एक दूसरा रास्ता भी है, और लोगों की तनकीद के जवाब में अल्लाह के रास्ते से दूर हो जाना। हमें अल्लाह से ये दुआ करने की जरूरत है कि हमारे दिलों को दूसरों से इतना बेनियाज कर दे कि हम दूसरों को देखने की बजाय अल्लाह को देखें कि अल्लाह ताला हमारे साथ क्या मामला करता है। सवाल पैदा होता है कि ये किस किस्म का गिल था जो अल्लाह ताला ने दिलों से दूर करने की बात की है। तो आप देखिए कि इंसानों के बीच में रहते हुए छोटी छोटी बातों पर खिंचाव आने लगता है। सगी बहने, माँ बेटी, उनके दिलों में भी एक दूसरे के लिए गिल आता है, आ सकता है। ये ऐसे जैसे यहां से हम बाहर पैदल जाएंगे थोड़ी दूर तो पाँव में धूल पड़ेगी, ये नामुमकिन है कि ना पड़े। सब्र ना हो, बर्दाश्त ना हो, तो एक दिन में शौहर बीवी एक दूसरे से दूर हो जाए, एक साथ ना रह सके। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं कि इसको साथ लेकर ना फिरो। पसीना आता है, कोई पसीने वाला जिस्म लेकर नहीं सोता। मट्टी लगती है, कोई मट्टी वाले पांव लेकर नहीं सोता। तो दिलों में जब गिल आ जाए तो उसको दूसरी तरफ कर दो। और आप देखिए, इंसानी ताल्लुक कभी एक जैसे नहीं रहते। वही जो कभी बहुत प्यारा होता है एकदम दिल खट्टा हो जाता है उससे, कभी शिकवा आ जाता है, कभी कुछ होता है, मिजाजों का खिलाफ, मिजाज खिलाफ होते हैं एक दूसरे के, गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, खाम खा मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, और शैतान इसी रास्ते से लोगों को पकड़ता है कि इसको जरा दूसरे से काटो ताकि मेरा इस पर जोर चले। नतीजा क्या निकलेगा? शैतान की हाथों में आ जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे दिलों को पाक कर दे। ये जो लफ्ज़ सुरूर आया, ये शरीर की जमा है, दुल्हन की मसहरी को कहते हैं, ऊंची मसनत। अरबों में अमूमन लोग फर्शों पे बैठते थे, जिसको आप कहते हैं ना फर्शी, जमीन पे बैठते थे, तो उनके लिए तो ये बात ही बहुत बड़ी थी कि जन्नत में कौचीज होंगी। ये हमारे लिए तो नहीं होगी वैसे बात, हमारी तो दुनिया की भी बहुत खूबसूरत कौचीज होती है ना, लेकिन उनके लिए ये चीज बहुत ही प्यारी थी। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ कि खदीजा को जन्नत में सोने के महल की खुशखबरी दे दो, जिसमें ना शोरो शगफ होगा, ना कोफ्त होगी और ना थकन होगी, और कोई वहां से निकाला ना जाएगा। ये है वो जन्नत जिसमें जन्नतियों को भेजा जा रहा है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। रिवायत में आता है कि जन्नतियों को जन्नत में भेजने के बाद कहा जाएगा कि तुम यहां हमेशा रहो और तुम्हें यहां से निकाला नहीं जाएगा, तुम कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा तंदुरुस्त तंदुरुस्त रहोगे, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम हमेशा जवान रहोगे। ये सब कुछ तो वहां होगा। हम आज की बात करते हैं, तो इसलिए उस जन्नत को पाने के लिए इस दुनिया में कुछ ना कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत रिवायतें हैं, लेकिन फिर बात आगे चली जाएगी, बस यहाँ पे इक्तफा करते हैं। कोई बात पूछना चाहें या शेयर करना चाहें? जी आप प्लीज।
शैतान के बारे में जो बात है कि शैतान की जरूरत कैसे, मतलब मेरे जहन में कैसे हमेशा बढ़ता है कि शैतान एक है तो उसकी जरूरत जैसे आदमी के साथ तो हवा थी,
जिनका सवाल है कि शैतान की जुर्रियत से क्या मुराद है, इंशाल्लाह सूरत बनी इसराइल में इस पे बड़ी तफसील से बात होगी। अल्लाह ताला ने कहा तू चढ़ा ला इन पर अजलिब अलैहिम, अपने पैदल अपने सवार, तो उसमें शैतान की क्या फर्टिलाइजेशन है कैसे, उस पे बात होगी इंशाल्लाह। और कोई बात? चलिए ब्रेक ले लीजिए क्विकली, 15 मिनट की ब्रेक है। इंशाल्लाह ताला हम उसके बाद अगला सबक शुरू करेंगे और फिर उसके नमाज पढ़ेंगे। जी ऑनलाइन से कोई सवाल? जी इंशाल्लाह मुखलिस बनने की कोशिश करनी है और अल्लाह ताला हम सबको शैतान से बचा के रखे, आमीन। जी आप लोग ऑनलाइन पे माइक होल्ड कीजिए प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर।
जज़ाकअल्लाह खैरन कैसी वासनुजज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो शैतान के बारे में हम लोग सब पढ़ते हैं तो इससे हमारा अज़्म कितना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि उसके जितने भी तरीके हैं और जो भी उसकी चालें हैं उसके खिलाफ हमें अपने आप को मजबूत करने की कितनी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको मुख्तलिफ तरीके सिखाए भी, बिकॉज जितना ज़्यादा हम गौर व फिक्र भी करते हैं और जितना ज़्यादा हम हमारे अंदर वो तड़प और तलब होती है उसी हिसाब से फिर हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मजबूत होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि जब किसी खतरे के बारे में पता हो तो उसके उसके एक तरह से काउंटर अटैक में क्या करना चाहिए कि तैयारी करनी चाहिए। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्रॉम शैतान एवरी ट्रिक्स, मुखलस बनने की कोशिश करनी है। बिल्कुल शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ही टर्न्स अगेंस्ट वन एंड अदर। बिल्कुल लोगों की तारीफ और तनकीद शैतान का उज़र है, बचना है। ये बात बिल्कुल कितनी इफेक्टिव है ना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हदीस के जरिए यही बताया कि इस किस्म के अमल से बचना चाहिए। और फिर हम सबको वो दुआ भी याद करनी चाहिए ना कि अगर कभी ऐसा हो तो हम फौरन वो दुआ पढ़ें कि अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यकूलून वली। शैतान इबादत तो करता था लेकिन इताअत नहीं करी। बिल्कुल आज हमारा भी यही हाल है, हमने इंशाल्लाह इबादत भी करनी है और इताअत भी करनी है। बिल्कुल हम समझते हैं कि इबादत इनफ है, जबकि जब इताअत करते हैं तो पता चलता है कि इंसान असल में मुसलमान है, बिकॉज लाइफ स्टाइल चेंज होगा तो ही तो पता चलेगा ना हर चीज के साथ कि कौन कितना स्ट्रांग है। Today made me realize what we are made from and what we are and how Shaitan wants to take us with him to hellfire. बिल्कुल عبادت کے ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے. بالکل صحیح, مخلص ہو کر ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو ویسے کہ آپ لوگ بھی اپنی بریک کریں اور پھر اس کے بعد ٹائم کے مطابق اگر ہوگا تو پھر ہم آج ریکیپ کریں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, چلیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بھی بریک 15 منٹ ہی کی ہے.